2 दिसंबर दिन भर दिन बुधवार मैं हूं रेहान फजल। चेन्नई में बारिश का कहर, सामान्य जीवन अस्त व्यस्त, सेना और एनडीआरएफ को राहत कार्य में लगाया गया।
रेस्क्यू एंड रिलीफ फुल स्विंग में चल रही है। एनडीआरएफ की 15 टीम है, 15 और जा रही हैं। पाबंदी आ रही है क्योंकि जो चेन्नई एयरपोर्ट है वो वाटरलॉक्ड है।
दुनिया जहान में चर्चा होगी जलवायु परिवर्तन सम्मेलनों के औचित्य की और आपकी मुलाकात कराएंगे मशहूर टेनिस खिलाड़ी लिएंडर पेस से।
She's really special and, हमारी फ्रेंडशिप काफ़ी क्लोज है। काफ़ी ग्रैंड स्लैम खेल चुके हैं, 2 ग्रैंड स्लैम जीत चुके हैं एक साथ। अभी जब हम एक्सिबिशंस खेलते हैं एक साथ, वी ट्राई एंटरटेन द फैंस, वी ट्राई एंड शो देम डिफरेंट शॉट्स।
लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार, अजय शर्मा से। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाढ़ प्रभावित तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में बचाव और राहत के आदेश दिए हैं। इसके लिए सेना की मदद ली जा रही है। चेन्नई में पिछले दिनों भारी मानसूनी बारिश के बाद बाढ़ के हालात बने हैं। ऐसा 100 साल बाद देखा जा रहा है। पूरे शहर में जनजीवन अस्त व्यस्त है। हवाई अड्डे में पानी भरा है, साथ ही ट्रेन और बस यातायात बुरी तरह प्रभावित हैं। बारिश और बाढ़ से कई लोगों की मौत हो चुकी है। अगले 72 घंटों में फिर तेज़ बारिश की आशंका जताई गई है। ब्रितानी संसद में आज सीरिया में इस्लामिक स्टेट के खिलाफ सैन्य कार्रवाई की सरकारी योजना पर बहस हो रही है। प्रधानमंत्री डेविड कैमरन ने हाउस ऑफ कॉमन्स को बताया कि इस्लामिक स्टेट एक खतरनाक संगठन है जो ब्रितानी लोगों को मारने और उनके बच्चों को बरगलाने की कोशिश में है। कैमरन ने इस साल ट्यूनीशिया के समुद्री बीच पर ब्रितानी पर्यटकों की हत्या का उदाहरण पेश किया और कहा कि ब्रिटेन को अमरीकी नेतृत्व वाले गठबंधन के साथ सीरिया में आईएस के ठिकानों पर कार्रवाई करनी चाहिए। हालांकि विपक्षी नेता जेरेमी कॉर्बिन ने कहा है कि ब्रितानी बमों से बेगुनाह नागरिक मारे जाएंगे। उधर अमरीकी विदेश मंत्री जॉन कैरी ने नेटो से आईएस के खिलाफ लड़ाई तेज करने की अपील की। कैरी ने ये बात ब्रसल्स में नेटो देशों के विदेश मंत्रियों से मुलाकात के बाद कही। अमरीकी नेतृत्व वाले नेटो संगठन ने सितंबर से अब तक आईएस के खिलाफ हजारों हमले किए हैं जिसमें जॉर्डन, कतर और सऊदी अरब भी हिस्सा ले रहे हैं। फ्रांस ने पेरिस पर हमले के बाद अभियान तेज किया है जबकि रूस सीरियाई सरकार के साथ मिलकर अलग से बमबारी कर रहा है। कैरी ने उम्मीद जताई कि ब्रितानी संसद भी प्रधानमंत्री कैमरन का समर्थन करेगी।
We're very pleased with the efforts by Prime Minister Cameron.
हम ब्रितानी प्रधानमंत्री डेविड कैमरन की इस कोशिश से काफ़ी खुश हैं कि उन्होंने सीरिया में आईएस के खिलाफ युद्ध के लिए संसद से समर्थन मांगा है। ये बेहद अहम कदम है और हमें उनके नेतृत्व पर भरोसा है। मुझे लगता है कि संसद इस पर सहमति जताएगी क्योंकि सभी का इस मुहिम में शामिल होना ज़रूरी है। ये थे अमरीकी विदेश मंत्री जॉन कैरी। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। रूसी रक्षा मंत्रालय ने आरोप लगाया कि तुर्की के राष्ट्रपति और उनका परिवार इस्लामिक स्टेट नियंत्रित इलाकों से हो रही तेल की अवैध सप्लाई में शामिल हैं। हालांकि तुर्की ने राष्ट्रपति पुतिन के इस आरोप को खारिज किया है जिसमें कहा गया था कि अंकारा ने तेल की सप्लाई को बचाने के लिए रूसी विमान गिराया। चुनाव में अपनी पार्टी की जबरदस्त जीत के 3 हफ्ते बाद म्यांमार की विपक्षी नेता ऑंग सान सू ची ने राष्ट्रपति से सत्ता हस्तांतरण के लिए बातचीत की है। राष्ट्रपति के प्रवक्ता ने बातचीत को छोटा लेकिन गर्मजोशी से भरा बताया। नेटो ने मोंटेनेग्रो को अपना 29वां सदस्य बनने के लिए आमंत्रित किया है। 16 साल पहले नेटो ने कोसोवो युद्ध के दौरान मोंटेनेग्रो पर बमबारी की थी जब वो यूगोस्लाविया का हिस्सा था। बीबीसी समाचार।
दिन भर में अभिवादन स्वीकार करिए रेहान फजल का। बारिश की मार झेल रहे चेन्नई में हवाई और सड़क यातायात बुरी तरह से प्रभावित हो गया है। वहीं बारिश के प्रकोप का सबसे ज्यादा शिकार बने इलाकों में सेना, नौसेना और एनडीआरएफ के दलों ने बचाव कार्यों को तेज कर दिया है। शहर में बिजली गुल होने की समस्या से भी लोगों को दोचार होना पड़ रहा है। मौसम विभाग ने कहा है कि चेन्नई में अगले 72 घंटे तक बारिश जारी रहने की संभावना है। इमरान कुरैशी की रिपोर्ट।
राहुल गोपीनाथन का तजुर्बा अजीब सा है। चेन्नई की भारी और लगातार बारिश की वजह से उन्हें 4 बार अपना घर छोड़ना पड़ा। अपनी पत्नी और बच्चे के साथ उन्हें अपनी बहन के घर में रुकना पड़ा।
मेरा केस में सिनेरियो ऐसा है कि 4 बार भर चुका है पानी, 4 बार फ्लडिंग हो चुका है। नवंबर 1 से चालू हो गया तो तभी तो 1 फीट पानी था। अभी मैं इवैक्यूएट किया था अपने फैमिली के साथ और इमीडिएट कर सकते इवैक्यूएट किया था। उसके बाद 2 दिन पानी नहीं था, 14 दिन से बारिश आ गया और उसमें करीब 3-4 फीट पानी भर गया था घर के अंदर, तो मैं बिल्कुल कुछ कर ही नहीं पाया।
ये सिर्फ राहुल का अनुभव नहीं है, मंगलवार गायत्री के लिए बहुत इम्पोर्टेंट था। कल उनकी नई नौकरी का पहला दिन था और उनका दफ्तर अडियार के पास है जहां हर जगह नदी का पानी भर गया था। उन्हें वापस घर पहुंचने में पूरे 8 घंटे लगे और जब वह घर पहुंची तो उन्हें मालूम हुआ कि उनके दोस्तों को और भी मुश्किलें उठानी पड़ी। वो कहती हैं,
The situation that I was stuck in is I went to work.
जब मैं घर पहुंची और दोस्तों से बात की तो पता चला कि मेरा तजुर्बा कुछ नहीं था। हमारे एक दोस्त ने कागज और बोतलों से एक नाव बनाई और उसमें अपने छोटे बच्चे को डालकर उसे घर छोड़ना पड़ा। हालात इतने खराब हैं। गायत्री और राहुल की कहानी चेन्नई के आम आदमी की कहानी है। अब की बार चेन्नई की बारिश ने बहुत सारे रिकॉर्ड तोड़े हैं, उनमें एक ये भी है कि 147 साल से लगातार छपने वाला अखबार द हिंदू आज बारिश के कारण नहीं छप पाया। अखबार के कर्मचारी प्रेस पहुंच ही नहीं पाए। लोगों की मुश्किलें कब खत्म होगी ये कोई नहीं बता सकता। बहरहाल मौसम विभाग ये कह रहा है कि अगले 48 घंटे महत्वपूर्ण हैं। दिल्ली से वंदना दान के साथ बेंगलुरु से इमरान कुरैशी।
चेन्नई में बाढ़ से परेशान लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने की कोशिशें जारी हैं। एनडीआरएफ की 15 टीमें चेन्नई पहुंची हैं, लेकिन हवाई अड्डा बंद होने की वजह से दिक्कतें भी हो रही हैं। हमारे सहयोगी अनुराग शर्मा ने बात की एनडीआरएफ के सलाहकार मेजर जनरल अनुराग गुप्ता से और उनसे पूछा कि राहत और बचाव का अभियान कहां तक पहुंचा है।
आप जैसे टीवी पे भी देख रहे होंगे, रेस्क्यू एंड रिलीफ फुल स्विंग में चल रही है। एनडीआरएफ की 15 टीम है, 15 और जा रही हैं। पाबंदी आ रही है क्योंकि जो चेन्नई एयरपोर्ट है वो वाटर लॉक्ड है, लेकिन जो त्रिची और तिरुपति के एयरपोर्ट है वहां पर लैंड करने का प्लान बनाया है और वहां से हेलीकॉप्टर से एनडीआरएफ की टीमें दिल्ली और उड़ीसा से एयरलिफ्ट हो गई हैं, तो वो ज्वाइन करेंगी। आर्मी की टीम, नेवी की और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की टीम्स पूरी तरह से रेस्क्यू ऑपरेशंस में लगे हुए हैं।
जी सर, ये बताएं कितने लोग अफेक्टेड हैं इस डेल्यूज से?
ये तो काउंट करना बहुत मुश्किल है, किसी के पास सेंसस नहीं है और इन एनी केस ये स्टेट ही आपको बता पाएगा क्योंकि कितने नफरी है वो हम नहीं बता सकेंगे।
सर कहाँ दिक्कतें आ रही है अभी रिलीफ एंड रेस्क्यू में?
दिक्कतें तो आ रही है क्योंकि कम्युनिकेशन नहीं है, टेलीफोन सब स्विच ऑफ है। आर्मी का नेट है वो तो आर्मी पर्सनल के बीच में ही है, एनडीआरएफ के जो कम्युनिकेशन सिस्टम्स हैं, तो हमको ट्विटर पर फेसबुक पर मैसेजेस आ रहे हैं कि मेरा भाई, मेरी माँ, मेरे बच्चे, मेरा दोस्त इस बिल्डिंग में है या एक मोबाइल नंबर से है, तो वो हम कॉन्टेक्ट कर रहे हैं। कुछ लोग जो बचे हुए हैं वो आके बता रहे हैं एनडीआरएफ को कि इधर चलिए, यहाँ से हम गाइड करके यहाँ से निकालिए लोगों को।
सर एक और बड़ी चीज़ जो लोग वहाँ फेस कर रहे हैं कि कम्युनिकेशन की कोई साधन नहीं बचे हैं क्योंकि बिजली भी नहीं है और लोग अपने मोबाइल फोन भी रिचार्ज नहीं कर पा रहे हैं। क्या लग रहा है कब तक बिजली रिस्टोर कर दी जाएगी जिन इलाकों में टेक्निकल दिक्कतों से गई है?
ये तो आप सिर्फ स्टेट से पूछिए कि कितना टाइम लगेगा, क्या जब तक कि वाटर पानी नीचे नहीं जाएगा एक स्तर से, अगर ट्रांसफार्मर पानी के नीचे है
जी
तो उसको ऑन करना तो खतरे की बात है। और ये तो जनरेटर्स होंगे जो बिल्डिंग्स में अगर बचे हुए हैं किसी और लेवल पे हैं, क्योंकि बारिश का तो आईएमडी ने आपको बताया है कि अगले हफ्ते तक बारिश है
जी।
लेकिन ये सब ना पाबंदी नहीं देती है, हम काम में पूरे जुड़े हुए हैं और रेस्क्यू चल रहा है। इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम, बहुत टाइम लग जाएगा।
कितना टाइम लग जाएगा सर कुछ बता सकते
हैं? कौन कह सकता है कि कितना बुरी तरीके से नुकसान हुआ है, रेलवे लाइन्स नहीं है, रोड सर्विसेज बंद है, तो काम सिर्फ बोट से ही हो रहा है और बोट सर्विस में डाली हैं 30-35 और एयरलिफ्ट करके भेज रहे हैं। उड़ीसा से भी स्टैंड बाय है, पुडुचेरी और आंध्र प्रदेश में भी आपको पता है बारिश का काफी नुकसान हुआ है, तो उनकी जो डेडिकेटेड टीम्स हैं उनको हम नहीं छू रहे हैं।
क्या नेवी की भी मदद ली जा रही है?
बिल्कुल, नेवी के डाइवर्स हैं, नेवी की बोट्स हैं, नेवी के सोल्जर्स हैं। एक INS एरावत मेडिसिन, फूड, वाटर लेके वाइजैक से चल दिया है और चेन्नई आ रहा है।
ये थे एनडीआरएफ के प्रवक्ता मेजर जनरल अनुराग गुप्ता। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी हत्या मामले में दोषियों को रिहा किए जाने के तमिलनाडु सरकार के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि राज्यों को जघन्य अपराधों में और उन मामलों में जिसकी जांच केंद्रीय जांच एजेंसी ने की हो उनमें दोषियों को बिना केंद्र सरकार से सलाह लिए क्षमादान देने का एक तरफा अधिकार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने 20 फरवरी 2014 को तमिलनाडु सरकार के मुरुगन, संथन और अरिवु को रिहा करने के सरकारी फैसले पर रोक लगा दी थी। दो दिन पहले ही उनकी मौत की सजा को उम्र कैद में बदल दिया गया था। अदालत ने चार अन्य दोषियों नलिनी, रॉबर्ट पायस, जयकुमार और रविचंद्रन को रिहा करने के फैसले पर यह कहकर रोक लगा दी थी कि सरकार ने आधिकारिक कार्यप्रणाली का पालन नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश का तमिलनाडु की राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यही सवाल रखा विनीत खरे ने वरिष्ठ पत्रकार आर राजगोपाल के सामने।
पॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस दो तीन चीज होंगे, क्योंकि आने वाले चुनाव मार्च 2016 में तमिलनाडु असेंबली इलेक्शन हो रहे, उसमें इमोशनल इश्यू बन जाएगी। जो जयललिता का इच्छा थी कि 7 तमिलियन को रिहा करके उसको पॉलिटिक्स बनाने के लिए, लेकिन आज कानून हो गया। ये मुझे लगता है जयललिता का ये बड़ा झटका है। बाकी अपोजिशन पार्टीज इन तमिलनाडु है, जैसे डीएमके, पीएमके, वो लोग भी जयललिता के ऊपर झंडा निकाल देंगे। सो पूरा स्थिति में देख करके एक तरफ जयललिता का नुक्स है, लेकिन ऑल इंडिया लेवल पर देखोगे नरेंद्र मोदी का फायदा ही फायदा है, क्योंकि अकाली दल इन पंजाब, जम्मू कश्मीर में पीडीपी और सम अदर पॉलिटिकल पार्टीज ऐसे रेजोल्यूशन मांग करके जो हथियार का रिलीज करने के लिए वायदा कर रहे थे, उसको भी झटका मिल गया है। उस झटका से नरेंद्र मोदी का फायदा है, लेकिन केंद्रीय पार्टी का फायदा, रीजनल पार्टीज का नुकसान है, ये ऑल इंडिया पर्सपेक्टिव में देखोगे तो।
तो जयललिता फिर ये जो फैसला है, इसको कैसे पेश करेंगी, प्रेजेंट करेंगी राज्य में?
राज्य में तो प्रेजेंट करने का विकल्प है ही नहीं है ना जी, क्योंकि जो जिस स्थिति में सुप्रीम कोर्ट ने इसका कठोर शब्द में 7 जज मेंबर ने फुल बेंच में फैसला दे दिया है, इसके ऊपर तो रिव्यू पिटीशन भी नहीं जा पाएंगे, नंबर एक। नंबर दो है, जयललिता का संभालना पड़ेगा डीएमके अपोजिशन का, जो रीजनल पार्टीज लाइक पीएमके एंड वाइको एमडीएमके का, जो इमोशनली वो विपअप करेंगे फीलिंग्स का, उसको कैसे जयललिता चुनाव में जीलेगी, ये तो मामला मुश्किल पड़ेगा जयललिता का। लेकिन मुझे लगता है तमिलनाडु में जो आफ्टर दिस फ्लड रिलीफ के बारे में, उसमें ये सारा दब जाएगा टोटली। जयललिता का नुक्स है, अपोजिशन तमिलनाडु में उसको फायदा है। तमिलनाडु स्थिति कैसे उभरेगी वो टाइम में बताएंगे। अनदर 3-4 महीने के अंदर अंदर ये इश्यू ठंडा भी हो सकता है, क्योंकि तमिलनाडु कांग्रेस इस इश्यू का उभारने के लिए कोशिश करेगी। कांग्रेस को स्ट्रेंथ नहीं है पॉलिटिकली, तमिलनाडु में कांग्रेस है, इसीलिए जयललिता को फायदा में भी हो सकता है। ये जो अनदर 1-2 महीने में जैसे रूप निकलेगा उसको ऊपर निर्भर करता है।
आखिरी सवाल आपसे राजगोपालन जी, ये जो फैसला है सुप्रीम कोर्ट का, ये कितना महत्वपूर्ण है, क्या क्या मैसेज गया है पॉलिटिकल क्लास को?
पॉलिटिकल क्लास को इसका मैसेज गया है बहुत कठोर शब्द से, इंडिया इज वन, इंडियाज यूनिटी कैन नॉट डिस्टर्ब बाय ईदर बाय किलर्स ऑफ एनी फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर और रीजनल व्हिपिंग अप फीलिंग्स। इसमें आप देखेंगे 7-7 लोग श्रीलंकन टमिलियंस है। सो श्रीलंकन टमिलियंस का, तमिल टमिलियंस का जो किस विरोध से देखते हैं जो स्थिति, जो इंटरनेशनल पॉलिसी से भी कुछ फर्क पड़ेगा आने वाले दिन पर, लेकिन तमिलनाडु का स्थिति इसी से कुछ जो, क्योंकि जो LTTE तो समाप्त हो गया है नॉर्थ ईस्टर्न प्रोविंस श्रीलंका में, उसको असर तो तमिलनाडु पॉलिटिक्स में नहीं पड़ेगी, लेकिन ऑल इंडिया पर्सपेक्टिव में देखोगे इंडिया सिक्योरिटी इज इंटैक्ट।
ये थे वरिष्ठ पत्रकार आर राजगोपालन। म्यांमार में अपनी पार्टी नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी की जबरदस्त चुनावी जीत के 3 हफ्ते बाद आंग सान सूची आज म्यांमार के राष्ट्रपति डेन सेन से मिली। सूची ने सेना के कमांडर इन चीफ मिन आंग लाइंग से भी मुलाकात की। ऐसा कहा जा रहा है कि सरकार के दोनों प्रमुख नेताओं से सूची की मुलाकात सौहार्दपूर्ण रही। सेना प्रमुख आंग लाइंग ने भी विपक्षी पार्टी नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी के साथ मिलकर काम करने पर सहमति जताई है। बीबीसी संवाददाताओं से मिले ब्यौरे का सार सुना रही हैं प्रगति सक्सेना।
पिछले महीने म्यांमार में हुए चुनाव 25 साल में पहले सबसे लोकतांत्रिक रूप से हुए चुनाव थे। हालांकि इन चुनावों में भी अल्पसंख्यक रोहिंग्या मुसलमानों समेत हजारों लोगों को वोट डालने का मौका नहीं मिला। इनमें आंग सान सू ची की पार्टी नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी ने करीब 80% सीटें जीतकर सरकार बनाने के लिए जरूरी 2/3 बहुमत हासिल कर लिया। इससे पहले 1990 में हुए चुनावों को सेना ने निरस्त कर दिया था। म्यांमार के सूचना मंत्री ये टुट के मुताबिक सरकार बनाने के लिए सूची और मौजूदा राष्ट्रपति देन सेन की बातचीत इस बात पर केंद्रित रही कि सत्ता परिवर्तन शांतिपूर्ण तरीके से किस तरह हो।
राष्ट्रपति ने वादा किया कि सत्ता में ये बदलाव सरल और बिना किसी रुकावट के होगा। आंग सान सूची ने भी कहा कि हमारी राजनीतिक व्यवस्था का लोकतंत्र में शांतिपूर्ण बदलाव हमारे जैसे नए लोकतंत्र के लिए एक अच्छी मिसाल साबित होगा। हमारी सरकार इस बात की गारंटी लेती है कि हम ये सब करके दिखाएंगे।
सूचना मंत्री ये टूट के शब्द। मौजूदा सैन्य सरकार शांतिपूर्ण सत्ता परिवर्तन का वादा तो कर रही है, लेकिन म्यांमार में लोकतांत्रिक सरकार बनाना इतना आसान नहीं है। इसमें सबसे अहम बात तो यह है कि संविधान के तहत संसद के दोनों सदनों में सेना के पास 25% सीटें हैं। इससे सेना को किसी भी संवैधानिक बदलाव को वीटो करने का हक मिल जाता है। दूसरी बड़ी बात ये कि संविधान के मुताबिक खुद आंग सान सूची का राष्ट्रपति बनना बहुत मुश्किल है। संविधान के अनुसार यदि आपके परिवार का कोई सदस्य विदेशी नागरिक है तो आप राष्ट्रपति नहीं बन सकते। सूची के दो बेटों को ब्रितानी नागरिकता प्राप्त है। संविधान कहता है कि म्यांमार के राष्ट्रपति को सैन्य अनुभव होना चाहिए। सूची को ऐसा कोई अनुभव नहीं, और अगर वो राष्ट्रपति बन भी जाती हैं तो भी सेना के प्रभाव से मुक्त होना आसान नहीं होगा। संविधान सेना को मंत्रियों की नियुक्ति समेत अनेक विशेषाधिकार देता है। ऐसे में जब म्यांमार में अगले साल फरवरी को नई सरकार गठित होगी तो संभावना है कि उसे पूरी तरह लोकतांत्रिक व्यवस्था में तब्दील होने में सालों लग जाएं।
आंग सान सूची की म्यांमार के राष्ट्रपति से मुलाकात। ये बीबीसी है, आप दिन भर सुन रहे हैं रेहान फजल के साथ। ये धरती जो हम सबका भरण पोषण करती है वो हर गुजरते लम्हे के साथ मैली होती जा रही है, और दुनिया के देश तू तू मैं मैं का खेल खेल रहे हैं। हर साल प्राकृतिक आपदाओं का संकट गहराता जा रहा है, और जिस पर जितनी ज़्यादा जिम्मेदारी है वो उतनी ही ज़्यादा लापरवाही दिखा रहा है। कथित विकास की कीमत चुकाती धरती पर क्या बीत रही है, और ऐसी हालत में पेरिस जैसे सम्मेलनों के औचित्य क्या रह जाता है। निखिल रंजन ने आज की दुनिया में, दुनिया जहान में यही जानने की कोशिश की है।
I think climate change is something that we're suffering from at the moment, and our kids and our grandkids are going to be feeling the effects of it for many years to come. And I think we're the last generation to have any voice to be able to do anything, and it's incredibly important that we take action now.
जलवायु की चिंता से परेशान दुनिया के रहनुमा समस्याओं पर विस्तार से चर्चा के लिए पेरिस तो पहुंच गए, लेकिन पर्यावरण को लेकर इनकी विश्वसनीयता ही जब सवालों में घिरी हो तो किसी ठोस नतीजे की बात बहुत दूर का सपना लगती है। दुनिया भर में हो रहे विशाल जन प्रदर्शन ये बता रहे हैं कि जितनी ऊर्जा इन नेताओं ने अपने भाषणों में दिखाई है उसका छोटा सा हिस्सा भी अब तक उनके उठाए कदमों में नजर नहीं आया है। भारत में पर्यावरण मामलों के जानकार आशीष कोठारी,
ये हम भूल जाते हैं कि पर्यावरण के हम हिस्से हैं, पर्यावरण हमारा हिस्सा नहीं है। अर्थनीति जो है वो एक पर्यावरण का हिस्सा है, उल्टा नहीं। कोई भी ऐसी प्रक्रिया जिसमें प्राकृतिक स्रोत जिस पे हम निर्भर हैं उसी को हम खत्म कर देंगे तो वो ना तो सतत हुई ना किसी भी तरह की इसमें कोई तर्क बनता ही नहीं है। अगर हम असल का विकास कहते हैं जिसमें कि मनुष्य का भी भला हो और अगली पीढ़ियों का भी भला रहे, तो उस तरह का सतत विकास या मनुष्य की जो जरूरत है उसको पूरा करने की जो गतिविधियां होनी चाहिए वो बिल्कुल अलग तरीके की होनी चाहिए। आजकल के विकास के उससे नहीं हो पाएगा।
जलवायु को बचाने और बेहतर बनाने की बहस के केंद्र में है विकास की वो धारणा जिसे अपनाकर पश्चिमी देश दुनिया में आगे बढ़ने का दम भरते हैं। दुनिया जानती है कि इस विकास की कितनी बड़ी कीमत पर्यावरण ने चुकाई है, और जब कथित विकास की दौड़ में पीछे रह गए देश भी अब पूरी तैयारी से उसी राह पर चल पड़े हैं तो धरती का कलेजा फटा जा रहा है।
40-50 साल से हम उसी एक विकास के दौर में चले हैं जो अमरीका और यूरोप बहुत पहले से चलता आ रहा है, जबकि हमें मालूम है कि वो एक गलत रास्ता है। हमें पता चल रहा है कि वो तो धरती को आगे तक ले ही नहीं जा पाएगा, लेकिन फिर भी हम उसी रास्ते पे चल रहे हैं। तो इसमें केवल गलती कर रहे हैं ये नहीं है, इसमें तो बल्कि जो बड़े पूंजीवादी लोग हैं, चाहे वो कंपनी हो, चाहे अमीर लोग हो, चाहे विदेश के हो, चाहे यहाँ के हो, उनका इसमें साफ हाथ है। वो उनका ये कहना है कि जब तक हमें मुनाफा मिल सकता है इस धरती से, कमाते रहें, अगली पीढ़ी को क्या होगा हमें क्या उससे लेना, और आज की पीढ़ी में भी गरीब लोगों को क्या होगा उससे हमें क्या लेना देना है।
विकास के लिए जिस रास्ते को आज ज्यादातर देशों ने चुना है उसकी कीमत चुका रहे हैं वो लोग जो जल जंगल और जमीन से लिपट कर जिंदगी बिताते हैं, धरती जिनका बिछौना है और छत है आसमान। तो क्या इन लोगों की आवाज पेरिस के जलवायु सम्मेलन तक पहुंच सकेगी? भारत में पर्यावरण की रक्षा के लिए संघर्ष करने वाली मेधा पाटकर,
आप भारत के प्रधानमंत्री के नाते अगर वहां जाकर ये कहेंगे भी कि पर्यावरण का बहुत महत्व है और आपके जैसे देश पूरी दुनिया के तापमान को बढ़ा रहे हैं, दुनिया को उनके जान खतरे में डाल रहे हैं, लेकिन खुद वो अपने देश में भी क्या कर रहे हैं इस पर कोई सवाल नहीं उठने वाले। ये बहुत दुखद बात है। भारत का ग्रीन हाउस गैस एमिशंस में कंट्रीब्यूशन कम दिखाने वाली जो आंकड़ा की जानकारी है उस पर ही हमारा तो विश्वास नहीं है, क्योंकि भारत में एक तो थोड़ा कंट्रीब्यूशन ग्लोबल तुलना में कम भी होगा तो भी भारत में इतनी सघन जनसंख्या है और प्राकृतिक संपदा और व्यवस्था भी इतनी सघन है कि उस पर जो असर होते हैं वो बहुत गंभीर है। दूसरा कि अब ग्लोबलाइजेशन के नाते कोई देश और देश में फर्क कर नहीं सकते, दूसरे देशों के कंपनियों को उसकी तकनीक को उनकी विकास की अवधारणा और विचार प्रणाली को यहाँ लाकर हम वही रास्ता अपना रहे, तो अगर आप भी उसी दिशा में जा रहे हैं तो आपको बोलने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। यहाँ आप पर्यावरणीय कानून बदल रहे हैं और वहां जाकर आप पर्यावरण की प्रशंसा कर रहे हैं, नदियों का बाष्पीभवन हो रहा है और भूजल भी खत्म हो रहा है और हिमालय पिघल रहा है ये बात करें, और यहाँ कोसी के बड़े बांधों को केवल एनर्जी इंटेंसिव अवधारणा के तहत ही नेपाल के भी रिसोर्सेस यहाँ खींच लाने की दिशा में आगे बढ़ाए।
जलवायु को लेकर भारत का रुख उस दुविधा का शिकार है जिसमें एक तरफ तो विकास की पश्चिमी अवधारणा की चमक है और जिसके लिए ये देश दबाव भी बना रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ यही विकसित देश कार्बन उत्सर्जन कम करने की भी मांग उठाते हैं और भारत से इस बारे में वचन चाहते हैं। जिस विकास का पैमाना GDP है उसके लिए कार्बन फुटप्रिंट को कम किए बगैर कदम बढ़ाने का कोई आसान रास्ता भारत जैसे देशों को नजर नहीं आता। दिल्ली के सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट की प्रमुख सुनीता नारायण,
आज भी US का कंजम्पशन कोल का भारत से 5 गुना ज्यादा है पर कैपिटा के बेसिस पे, और अगर आप देखें US आज कोयला इसलिए कम कर रहा है क्योंकि उसके पास नेचुरल गैस है और नेचुरल गैस भी एक फॉसिल फ्यूल है, नेचुरल गैस से भी प्रदूषण होता है। तो ये सवाल पूरी तरह से जो हमारे सवाल हैं, ये दुनिया तक हम नहीं पहुंचा पा रहे हैं।
भारत के लिए चीन कई मामलों में सबक है, आबादी से लेकर औद्योगिक विकास तक के मामले में ऐसी कई चुनौतियां हैं जो या तो भारत के सामने आ चुकी हैं या फिर आने वाली हैं। जिन देशों के रास्ते पर चलकर चीन ने अपने लिए ऊंचाइयां बटोरी हैं, वही देश उसे पर्यावरण के लिए जोखिम पैदा करने का जिम्मेवार बता रहे हैं। भारत भी चीन की राह पर ना चल पड़े इसके लिए उस पर पहले से ही दबाव बनाया जा रहा है। गनीमत है कि कम से कम इस मुद्दे पर दिल्ली की सरकार ने झुकने से मना कर दिया है, लेकिन दिक्कत यह है कि भारत अड़ा रहा तो भी पर्यावरण की मुसीबतें कम नहीं होंगी। मेधा पाटकर,
वाले देशों को चुनौती देना, उनके सामने सवाल खड़े करना ये तो जरूरी है, पर कौन नैतिक अधिकार रखता है सवाल खड़े करने का? उनके ही FDI यहाँ के हर क्षेत्र में लाने वाले, उन देशों में भेज देने के पहले ही उनके कंपनियों के साथ एग्रीमेंट करने वाले, वहाँ की भी सरकार ही इसमें शामिल है, जनता नहीं है, तो वहाँ भी सरकार और जनता के बीच में जो दूरी है उसको समझना जरूरी है। इसलिए आज उनके देशों के विकास की अवधारणा पर तो सवाल होने ही चाहिए, उनके एमिशंस पर सवाल होने चाहिए, उनकी एनर्जी इंटेंसिटी पर सवाल होने चाहिए, पर हमारे देश के सत्ताधीश उसी को तो यहाँ निमंत्रित कर रहे हैं, उसी को बढ़ावा दे रहे।
तो क्या जलवायु के नाम पर होने वाले इन विशाल सम्मेलनों का हासिल कुछ भी नहीं?
सम्मेलन को एक मर्यादित अर्थ है, उस मौके पर जो चर्चा उठी है और जो भारत में भी अलग अलग जगह पर लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया दी है और वहाँ भी जो लोग नहीं जुलूस निकाल पाए पर एकत्रित हुए हैं, उनसे एक जो बहस शुरू होती है वो मुझे लगता है ज्यादा महत्व की है।
चाहे कोई बहुत बड़ा शक्तिशाली अग्रीमेंट ना भी निकले, लेकिन एक और कदम जो है लोग अपने आप को सशक्त बनाने में और दबाव डालने में ज्यादा और प्रभावशाली बन पाएंगे।
साफ हवा में सांस लेने, ताजा पानी पीने और तबाही की ओर बढ़ते कदमों को रुकते देखने के लिए धरती को शायद कुछ और कुर्बानी देनी होगी। निखिल रंजन, BBC दिल्ली।
पिछले दिनों नामी टेनिस खिलाड़ी लिएंडर पेस और मार्टिना नवरातिलोवा कुछ प्रदर्शनी मैच खेलने भारत में थे। ये दोनों साथ साथ मिश्रित युगल के दो ग्रैंड स्लैम खिताब जीत चुके हैं। हमारे साथी नितिन श्रीवास्तव ने लिएंडर पेस से खास मुलाकात की।
लिएंडर पेस, बहुत बहुत शुक्रिया बीबीसी हिंदी से बात करने के लिए।
कैसा लग रहा है उन पुराने दिनों को दोबारा से रिलिव करना, मार्टिना नवरातिलोवा, लिएंडर पेस टेनिस कोर्ट पर और वो भी भारत में?
मार्टिना बहुत मशहूर खिलाड़ी है और अपने देश पे मार्टिना के साथ खेलने के लिए बहुत मेहनत हम लोग की है। जिस तरह से वो खेल रही है इस उम्र पे, इट्स रियली इनक्रेडिबल। मार्टिना एक मशहूर खिलाड़ी है, मगर जो इंसान है बहुत बहुत मशहूर इंसान है।
लिएंडर, आपने हमेशा कहा है कि मार्टिना जो है वो आपके लिए एक इंस्पिरेशन रही है। आप खुद 42 साल के हो गए हैं, लेकिन अभी भी आपके अंदर ग्रैंड स्लैम और टूर्नामेंट्स में उतनी एनर्जी, उतना उत्साह देखने को मिलता है। तो क्या मार्टिना का जो इंस्पिरेशन है वो अपने साथ कैरी कर रहे हैं आप अभी भी और आगे भी करेंगे?
ज़रूर, मार्टिना हमारे एक इंस्पिरेशन है। काफ़ी सीख चुके हैं मैं मार्टिना से। उसके करियर, शी प्लेड टू शी वॉज 49 ईयर्स ओल्ड एंड दैट इज़ स्पेशल। मार्टिना जिस तरह से अपने टेनिस को और अपने फिटनेस को इवॉल्व किया, जिस तरह से वो इतना ट्रेनिंग मेथड सीख चुकी है, बहुत बहुत ज़बरदस्त खिलाड़ी है।
लिएंडर, मार्टिना के साथ आपने दो ग्रैंड स्लैम जीते हैं, अनेकों टूर्नामेंट्स में भाग लिया है, कुछ अपने अनुभव बताइए, कुछ एक्सपीरियंसेस बताइए उनके साथ टेनिस खेलने में कैसा लगता था, क्या क्या चीज़ें आपको उनकी याद हैं और क्या चीज़ें आपके साथ हमेशा रहेंगी?
मार्टिना इज़ वन ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड्स। मार्टिना ज़रूर एक बहुत क्लोज फ्रेंड है और मैं काफ़ी रिस्पेक्ट करती हूँ मार्टिना को, कि जिस तरह से वो टेनिस खेलती है, जिस तरह से की इंसान है वो, शी इज़ रियली स्पेशल। एंड हमारी फ्रेंडशिप काफ़ी क्लोज है, काफ़ी ग्रैंड स्लैम खेल चुके हैं, दो ग्रैंड स्लैम जीत चुके हैं एक साथ। अभी जब हम एक्सिबिशंस खेलते हैं एक साथ, वी ट्राई एंड एंटरटेन द फैंस, वी ट्राई एंड शो देम डिफरेंट शॉट्स, वी ट्राई एंड शो देम दैट थ्रू टेनिस यू कैन क्रिएट लाइव्स। एंड जिस तरह से मार्टिना ने कर चुकी है, जिस तरह से मैं कर चुका हूँ, वी वॉन्ट टू टीच द यंग चिल्ड्रन दैट यू ऑल कैन बी वर्ल्ड चैम्पियंस, यू ऑल कैन बी अमेजिंग ह्यूमन बींग्स यूजिंग योर टैलेंट।
यानी ये सवाल टेनिस से जुड़ा तो नहीं है, ये आपकी फिटनेस से जुड़ा सवाल है। आप माशाल्लाह काफ़ी फिट हैं अभी भी। अभी कुछ दिन पहले मैंने एक तस्वीर देखी थी, आप जलेबी के मज़े ले रहे थे। कुछ अपनी मिठाइयों की पसंद और तमाम चीज़ों के बारे में बताइए।
सोशल मीडिया में बहुत ध्यान रखते
हैं। हाँ, मैं सोशल मीडिया काफ़ी फॉलो करता हूँ, उसमें आप जलेबी के मज़े ले रहे थे। तो ऑफ टाइम में क्या क्या करते हैं, क्या खाना पसंद करते हैं, लिएंडर पेस की पसंद क्या क्या है?
आई हैव डेफिनेटली गॉट अ स्वीट टूथ, आई हैव गॉट बंगाली ब्लड इन मी, बट मगर टेनिस बहुत फिजिकल फिटनेस पे ध्यान देते हैं, बहुत इंटेंस फिटनेस खेल है ये। तो व्हेन वी गेट एन ऑफ सीजन देन यू वांट टू एंजॉय इट लिटिल बिट। फॉर मी आई लाइक फूड, आई एम अ कंप्लीट फूडी, आई लव टू ईट।
क्या क्या खाते हैं आप ज़्यादा?
बहुत कुछ। हमारे ग्रैंड मदर बहुत अच्छे कुक थे, शी यूज्ड टू मेक अमेजिंग फूड, पुर्चुगीज फूड, सी फूड, इंडियन फूड, कोंकण कोस्टल फूड। मम्मी तो बंगाली है, तो बंगाली फूड,
मछलियाँ
और बंगाली स्वीट्स बहुत पसंद है मेरे को। मगर जिस तरह से मैं दुनिया ट्रैवल करता हूँ और इस मौका मिले मुझे कि पूरा दुनिया ट्रैवल करके, कि जो कल्चर्स जो हैं, जो फूड जो हैं, जो लोग जो हैं, टू एक्सपीरियंस ऑल द कल्चर्स, दैट इज समथिंग दैट्स सो ब्यूटीफुल अबाउट टेनिस।
लिएंडर पेस से बात कर रहे थे नितिन श्रीवास्तव। और अब सुनते हैं मुख्य समाचार एक बार फिर।
बीबीसी समाचार। चेन्नई में बाढ़ से बचाव और राहत के लिए सेना की मदद ली जा रही है और अगले 72 घंटों में फिर तेज बारिश की आशंका जताई गई है। ब्रितानी संसद में आज सीरिया में इस्लामिक स्टेट के खिलाफ सैन्य कार्रवाई की सरकारी योजना पर बहस चल रही है। उधर अमरीकी विदेश मंत्री जॉन कैरी ने नेटो से IS के खिलाफ लड़ाई तेज करने की अपील की है। रूसी रक्षा मंत्रालय ने आरोप लगाया है कि तुर्की राष्ट्रपति और उनका परिवार इस्लामिक स्टेट नियंत्रित इलाकों से हो रही तेल की अवैध सप्लाई में शामिल हैं। स्लोवाक सरकार ने यूरोपियन यूनियन के 1,20,000 शरण चाहने वालों को अलग अलग देशों में बांटने के फैसले के खिलाफ कानूनी जांच शुरू की है। बीबीसी समाचार।
दिन भर को यहीं विराम देते हैं। ये कार्यक्रम आप तक पहुंचाने में मदद की अजीत सारथी ने, रेहान फजल को सभी साथियों के साथ इजाजत दीजिए। नमस्कार।